नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीज अधिनियम लाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जयपुर के हरमाड़ा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। और उच्चतम न्यायालय ने आरपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि केवल रिजर्व लिस्ट में नाम होने से उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया केवल 10 वर्षों में ही क्रांति बन गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत के युवा वास्तविक समस्याएं हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है।
श्री मोदी ने नए सपने देखने वाले युवा नवोन्मेषकों के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप संस्थापकों और नवोन्मेषकों का इकट्ठा होना तेजी से विकास कर रहे नए भारत के भविष्य को दिखाता है। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। गौरतलब है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पहले 16 जनवरी 2016 में की थी। इसका शुभारंभ नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हुआ था। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पाली के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय परिसर के स्टार्टअप सेंटर में विद्यार्थियों और उद्यमियों के लिए सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली और अनाधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।
कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आप इस कहना चाहता हूं कि हमारी
विकसित भारत जी रामजी कानून पर आज जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में राज्य के हर गांव और ढाणी तक सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही वीबी जी रामजी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और शंकाओं को दूर करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि वीबी जी रामजी कानून में मनरेगा की विभिन्न खामियों को दूर करते हुए और बेहतर बनाया गया है। विपक्ष इस नए कानून को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है
कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक गांव में कोई ठोस काम हो, गांव की अपेक्षा के अनुरूप गांव में हो काम हो और एक तरीके से आने वाले समय में 4-5 सालों में एक पूर्ण रूप से विकसित गांव हम सबको देखने को मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये मनरेगा को बंद नहीं किया, मनरेगा में जो कमियां थी उनको दूर करके जी राम जी का कानून बनाया गया।
कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने भाग लिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण और निर्यात केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्य सचिव आज जयपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र के बारे में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इस पॉलिसी में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर उत्पादन को बढ़ाने से लेकर टेक्सटाइल तकनीक, वस्त्र निर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद और फुटवेयर सहित अन्य संबंधित क्षेत्र भी इस नीति का हिस्सा हैं। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत भीलवाड़ा, बालोतरा, कोटा, पाली और बाड़मेर जिलों के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जयपुर के हरमाड़ा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहां जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के सानिध्य में हुए अनुष्ठान में पूर्ण विधि विधान से आहुति दी। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति दिल्ली लौट गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि नारी शक्ति की प्रगति ही विकसित राजस्थान के निर्माण का मजबूत आधार है। उन्होंने आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और संपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। श्री शर्मा ने कहा कि उनसे मिले सुझाव आगामी बजट को समावेशी और महिला केंद्रित बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।
स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करने के लिए आपको क्या सुझाव है? आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? आपके उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की जाए? प्रशिक्षण और कौशल के विकास में क्या सुधार करना चाहिए? इन सभी बातों को लेकर के आपके सुझाव आने चाहिए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आप इस तरह के सुझाव भी दें और आगे काम भी करें। समय समय पर हम आपको इस तरह के सुझाव भी लेते रहेंगे। आपको राजस्थान के विकास में आपकी भागीदारी हो और हमारा उत्कृष्ट राजस्थान बने।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष में संशोधन करने जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने बताया कि अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति को जानने के लिए आधार वर्ष की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रमुख संरचनात्मक बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि GST और व्यापक रूप से डिजिटाइजेशन ऐसे कुछ कारक हैं जिनकी वजह से देश में आधार वर्ष को अपडेट करना जरूरी हो गया है। आधार वर्ष अब 2011-12 के स्थान पर 2022-23 होगा।
जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था थी 2011-12 में, वो नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो पहले नहीं थे। एनर्जी के सोर्सेज हैं वो चेंज हो गए हैं और अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। जो ढांचा था अर्थव्यवस्था का, वो ढांचा अब बदल गया है और उस नए ढांचे को विस्तार से दर्शाया जाने के लिए हमें आधार वर्ष की परिवर्तन करना पड़ता है।
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल रिजर्व लिस्ट में नाम होने से उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के पिछले आदेशों को रद्द कर दिया है। अदालत ने व्यवस्था दी है कि भर्ती नियमों के अनुसार आरक्षित सूची केवल 6 महीने तक ही वैध रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी माना कि चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक खुला रखना नए अभ्यर्थियों के अवसरों का हनन होगा। आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन आज भी साहित्य की गंगा बही। हवा महल की नगरी जयपुर में आयोजित इस साहित्यिक उत्सव में भारत और दुनिया भर के लेखकों, विचारकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी माधुरी वशिष्ठ।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन आज साहित्य, कला और सामाजिक मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। देश विदेश से आए प्रसिद्ध लेखकों ने अपनी नई कृतियों पर चर्चा की और पाठकों के सवालों के जवाब दिए। फेस्टिवल के सुबह के सत्र में इतिहास, राजनीति और समकालीन साहित्य पर विचारोत्तेजक चर्चाएं हुई। जयपुर की साहित्यिक और सांस्कृतिक ऊर्जाओं से भरपूर इस आयोजन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शोधार्थी और पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। आयोजन स्थल पर पुस्तक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संवाद सत्रों में लगातार भीड़ उमड़ रही है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा।
और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में तापमान में मामूली बढ़ोतरी से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। आज कई जगह तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई स्थानों पर दिन का तापमान 25 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया, वहीं 4 स्थानों पर रात का पारा 5 से 9 डिग्री के बीच मापा गया। कुछ जगह शीतलहर के हालात रहे, वहीं उत्तरी भागों में कोहरा छाया रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कल से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इससे अगले 48 घंटों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार नकली बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीज अधिनियम लाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जयपुर के हरमाणा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। और उच्चतम न्यायालय ने आरपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि केवल रिजर्व लिस्ट में नाम होने से उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। We'll be right back.